मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज 10 नवंबर 2016 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि आज मैं अपने विषय पर बात करना शुरू करूं, आप लोगों के लिए फिर से एक छोटी सी सूचना है जो पहली ही सूचना से जुड़ी हुई है। आप लोगों को ध्यान होगा कि 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक सूचना दी थी कि मेरी पत्नी प्रीति अग्रवाल जो लाइफ काउंसलर हैं, उन्होंने आप लोगों की समस्याओं को फोन पर सुलझाने के लिए एक समय निश्चित किया है। और यह हम लोगों ने इस आधार पर निश्चित किया था मित्रों कि आप सब में से बहुत लोगों के मेल्स आते थे और उस मेल में वे अपनी समस्याओं का समाधान मांगते थे। और सच पूछे तो मेरे लिए डेली ऑडियो में उसे लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में उसे लेना संभव नहीं हो पाता था, और अगर मेल से उसके रिप्लाई दिए जाएं तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। सच पूछे तो बातचीत से जो बात बनती है वह एक तरफा संवाद से नहीं बनती है। तो हम लोगों ने जब इस पर विचार किया तो फिर प्रीति अग्रवाल ने यह फैसला किया कि ठीक है, वो सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप लोगों के कॉल्स अटेंड करेंगे। तो मित्रों, इधर कॉल की संख्या ज्यादा होने लगी और ऐसे समय में हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत से आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो फोन मिला रहे होंगे लेकिन बात नहीं हो पा रही होगी क्योंकि एंगेज आ रहा होगा। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए ये 11 बजे से 12 बजे का टाइम सर्विस का टाइम हो, क्लास का टाइम हो कॉलेज का या कोचिंग क्लासेस का, इसको ध्यान में रखते हुए एक और टाइम स्लॉट फिक्स किया गया है और वह टाइम है शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। यानी कि अब आप एक दिन में 2 बार इन समय के बीच में डॉक्टर प्रीति अग्रवाल से अपने लाइफ के बारे में एडवाइस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये टाइमिंग्स हैं फ्रेंड्स, सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच और शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से उनका मोबाइल नंबर बता देता हूं। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग पहली बार इस सूचना को सुन भी रहे हों। तो मित्रों, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। तो मित्रों, ये डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर है। आप सब सुबह 11 से 12 के बीच में और शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के अपने विषय पर और मेरा विषय अभी भी पुराना वाला है जिसे हम पिछले 2 दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। और मित्रों, इन 2 दिनों में मैंने आपके सामने अपनी दृष्टि से, अपने विचारों से 2 तथ्यों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। एक में ईश्वर को लेकर के बात थी पहले दिन, और कल हम लोगों ने फिर जो धर्म होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। मित्रों, अब मैं रियल सवाल पर आता हूं। जो से स्टूडेंट का सवाल था वो था पूजा पर। उनका प्रश्न तो यही था ना कि लोग पूजा क्यों करते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे 2 दिन आप लोगों का एक्स्ट्रा वक्त लेना पड़ा, इसके लिए माफी चाहूंगा। क्योंकि मैं समझता हूं दोस्तों कि जब तक किसी भी इशू के बारे में संपूर्णता के साथ न बताया जाए, या यूं कह लीजिए कि विस्तार के साथ न बताया जाए, तब तक बात बनती नहीं है। देखिए, बात समझ में तो आ जाती है, आप कन्विंस भी हो जाते हैं, लेकिन बात बनने का मतलब है कि वह आपके अंदर नहीं उतरती। यूं कह लीजिए कि आपके शायद आचरण में वह शामिल नहीं हो पाती है। और चूंकि मैं ये मानता हूं कि ये इस तरह के जो विषय होते हैं या जीवन के जो दूसरे भी विषय होते हैं बहुत ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो जरूरी है कि हम उन जोड़ों को भी देखें, तब बात समझ में आती है। जैसे बात की गई थी पूजा के बारे में, लेकिन हम बात करने लगे धर्म के बारे में और ईश्वर के बारे में, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि जो पूजा है वो धर्म और ईश्वर इन सब से इंटर कनेक्टेड है। इसलिए मित्रों मैंने उन दोनों के बारे में भी बात की और आज मैं पूजा के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि पहले दिन मैंने एक बात आपसे कही थी कि जो हमारा जीवन है ये केवल बाहरी नहीं है जो दिखाई दे रहा है, ये जो शरीर है ये बाहरी जीवन से संबंध रखता है, लेकिन हमारा एक आंतरिक जीवन भी है जो सच पूछे तो बाहरी जीवन से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई गुना ज्यादा व्यापक भी है और कई गुना ज्यादा गहरा भी है, जिसे आप सरल शब्दों में आंतरिक जीवन कह सकते हैं। दोस्तों बाहरी जीवन को तो भौतिक वस्तुओं की जरूरत होती है, और लेकिन जो आंतरिक जो हमारा जगत है, जो आंतरिक हमारा जो जीवन है, उसे भौतिक वस्तुओं से हटकर, भौतिक वस्तुओं की जरूरत है ही नहीं, वह काम उसने बाहरी जगत को छोड़ दिया है, उसे आंतरिक वस्तुओं की जरूरत होती है। और ये जो आंतरिक वस्तुएं हैं ये क्या है, बस इसे ही हम देखेंगे। मित्रों बाहरी जगत और आंतरिक जगत में काफी कुछ जुड़ाव होने के बावजूद काफी कुछ अलगाव भी होता है। मैं आपको एक लाइन, खूबसूरत लाइन बता रहा हूं जो एक गजल की लाइन है और ये मेरी समझ से शायद अर्थ फिल्म की है जो महेश भट्ट जी ने बनाई थी, शबाना जी इसमें रोल कर रही थी और मुझे ये बहुत खूबसूरत लाइनें लगती हैं। वो लाइन है मित्रों कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब आप इसको थोड़ा सा संवेदना के स्तर पर महसूस करने की कोशिश कीजिए, केवल सुनने की नहीं। अब आप देखें कि व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि देखने वाले को लगेगा कि ये व्यक्ति खुश है, क्या खुश है, कितना अच्छा जीवन है। लेकिन वो कह नीचे की लाइन में कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, कि ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ये मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। सच बात यह है कि तुम्हारे अंदर कोई गम है, कोई गहरा अवसाद है, कोई दर्द है, और उस दर्द को छुपाने के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो। देख रहे हैं आप, बिल्कुल कंट्राडिक्शन है, एकदम कंट्राडिक्शन है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है मित्रों, ये हमारे बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन का कंट्राडिक्शन है। ऊपर से हम बहुत खुश दिखाई दे सकते हैं, वैभववान दिखाई दे सकते हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सुख सुविधाएं, वैभव, पावर, सब कुछ है, लेकिन अंदर से हम अवसाद से घिरे हुए हो सकते हैं, बाहरी भरे पूरे होने के बावजूद अंदर से खाली हो सकते हैं। और सच पूछे तो कभी कभी मुझे तो आंतरिक जीवन के लिए एक बड़ा अच्छा बिंब याद आता है, और जब मैं गर्मी के दिनों में जब सफर करता हूं और देखता हूं कि खेतों को देखिए, आपकी खेत बिल्कुल सूख गए हैं, जमीन के ऊपरी परत पर पपड़ियां पड़ गई हैं, बीच बीच में दरारें आ गई हैं, मिट्टी एकदम शुष्क हो गई है, धूल उड़ रही है और ऊपर चिलचिलाती हुई धूप। मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा आंतरिक जीवन भी यही है, या ये धरती का पूरा वातावरण हमारे अपने अंदर उतर गया है, ऊपर सब कुछ गीला है, सब कुछ है, लेकिन अंदर पपड़ी जमी हुई है, शुष्कता है, निरसता है, किसी और चीज की खोज है, मतलब एक बरसात के बूंदों की खोज है कि ताकि ये गीला हो सके, ये दरारें जो फटी हुई हैं इनमें पानी भर जाए तो ये सम हो सके, जो धूल, जो धूप, जो गर्मी, जो लू दिखाई दे रही है ठंडी बयार बह सके। तो मित्रों अब इसको हम करें कैसे, इसको हम पाएं कैसे, क्या उपाय हो सकता है? दोस्तों हम चेहरे की उदासी को हंसी से मिटा सकते हैं, चेहरे के रूखेपन को क्रीम मॉइस्चर लगा करके शायद थोड़ा सा गीला कर सकते हैं, पसीने की गंध को, दुर्गंध को, पसीने की गंध नहीं कहना चाहिए, शरीर की दुर्गंध कहना चाहिए, शरीर की दुर्गंध को डिओड्रेंट और क्या क्या पाउडर है लगा करके दूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर की दुर्गंध को, अंदर की खामोशी को, अंदर की शुष्कता को, अंदर की खाइयों को, उसके लिए क्या करेंगे मित्रों? कुछ नहीं। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष कि ये जो पूजा है वो अंदर की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने का एक माध्यम मार्ग है, बस एक माध्यम मात्र है, बस और कुछ नहीं है। इसे आप चेहरे पर लगाए जाने वाला, अंदर के चेहरे पर लगाए जाने वाला क्रीम कह लीजिए, हमारे अंदर होने वाली बरसात कह लीजिए, जो चाहें आप कह लीजिए, मुझे लगता है कि यह सिर्फ यही है। हम अंदर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि अंदर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता अलग से, क्योंकि अंदर ही दिखाई नहीं देता। जब हमको अंदर ही दिखाई नहीं दे रहा है तो रास्ता कैसे दिखाई देगा? तो हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो आग पहले लोग रहे हैं अपने अनुभव से इसके लिए कुछ रास्ते तलाश कर लिए कि हम अंदर पहुंचे कैसे। ईसाई धर्म ने प्रार्थना का रास्ता तैयार कर लिया, प्रेयर का रास्ता तैयार कर लिया। इस्लाम ने नमाज अदा करने का रास्ता तैयार कर लिया, एक महीने तक आप देखिए व्रत उपवास रखने का रास्ता अख्तियार कर लिया, उसने वो रास्ता अख्तियार किया। सिख धर्म ने, सिख संप्रदाय ने शबद कीर्तन का रास्ता अख्तियार कर लिया, और हिंदू धर्म ने सैकड़ों रास्ते अख्तियार कर लिए, उसमें से एक रास्ता ये पूजा भी है। भगवान को स्नान कराओ, चंदन लगाओ, फिर दीपक से आरती उतारो, और फिर अगरबत्ती लगा दो, फिर उनको फूल चढ़ा दो, सुगंधित रंग बिरंगे फूल चढ़ा दो, जहां पर भगवान बैठे हैं थोड़ा सा एक मंदिर नुमा बना दो, उसको साफ सुथरा भी रखो। ये सब क्या है? सोच के देखिए कि ये सारे के सारे तो भौतिक उपाय है ना, इसमें कहीं कोई धर्म नहीं है। जितनी चीजें आप इस्तेमाल करें सब के सब तो भौतिक चीजें हैं, लेकिन इन भौतिक चीजों से जिस वातावरण का निर्माण हो रहा है वो अभौतिक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात है। फूल की सुगंध शामिल हो रही है, उनके रंगों की खूबसूरती शामिल हो रही है, दीपक का प्रकाश शामिल हो रहा है, पवित्रता के कारण सकारात्मक तरंगे उठ रही हैं, अगरबत्ती की कि न केवल वो जलती हुई जो फैलता हुआ जो धुआं है एक कुहासा सा फैल करके न केवल रहस्य की सृष्टि कर रहा है बल्कि सुगंधित वातावरण को सुगंधित भी बना रहा है। तो आप देख रहे हैं ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक 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 केवल एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। मित्रों, यहां मैं जानबूझ करके एक एक पर कई बार जोर दे रहा हूं, एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं जिस वातावरण को आप महसूस कर सके, बस दैट्स ऑल, उसको आप महसूस कर सके। और जैसे ही आप महसूस करते हैं आप अपने अंदर पहुंच जाते हैं। बस जब आप अपने अंदर पहुंच जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए रोमांचित हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाएंगे, गला भर आएगा, अलग तरह की अनुभूति होने लगेगी। और जैसे ही यह अनुभूति होने लगे आप समझ लीजिए कि आपके अंदर थोड़ी देर के लिए धर्म उतर आया है, अध्यात्म उतर आया है, ईश्वर उतर आया है, जो कुछ भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन मित्रों, यदि यही पूजा मेरे लिए एक रूटीन बन जाए, यही पूजा मेरे लिए एक बोझ बन जाए, अनुभूति खत्म हो जाएगी। जब अनुभूति खत्म हो जाएगी तो उसका अर्थ भी खत्म हो जाएगा, फिर तो मैं केवल अपने को भ्रम में डालने के लिए पूजा करता हूं। मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा, यह सिर्फ मेरी 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 और अपनी ही परिभाषा है, अपनी ही अपने ही विचार हैं, अपनी ही अनुभूतियां हैं, अपने ही अनुभव हैं। इसे आप बिल्कुल अन्यथा न लें, आप अपने ढंग से अपने लिए अपना रास्ता तैयार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और उसे अख्तियार भी कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं तो पूजा बस इसलिए करता हूं, बस कुल मिलाकर, कि वो एक क्षण के लिए मेरे शरीर के जो की जो कोशिकाएं हैं उनको मुस्कुराने का मौका मिल जाए, बस। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इस प्रश्न को जो पूछा गया था उसके उत्तर को समाप्त करता हूं। यदि इस पर आप लोगों के कुछ और प्रश्न हो तो आप लोगों के प्रश्नों का स्वागत है, आप मुझे लिखकर भेजें, हो सकता है कि फिर लाइफ मैनेजमेंट में हम उसी इश्यू पर बात करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का लाइफ मैनेजमेंट यहीं समाप्त होता है। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।